became in a very respected Vaishnav family. His father and mother were respected Vaishnav. In any night of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they used to worship Radha Govinda Rakshini Devi there in their home. Radha Gopal. They used to. That's how for fathers also. It is this, that deity is still there. And that is why Govinda Maharaj has told his so many disciples to make a very good temple there so that worship can be done there in a very proper way. And if he was in this world, I think that it would have been done in this year. But unfortunately, he left this planet and went to serve his holy master and Radha Govinda. I know that he was so learned in Gaudiya Vaishnava Siddhanta, especially he was so much learned in Bhaktivedanta Sindhu, and then deeply entered into the Siddhanta of Chaitanya Charitamrita, especially first, fourth, second, eighth, Rupa Goswami Siksha, Sanatana Siksha, especially Raya Ramananda dialogue. That he has written in his book, these books are, he sent to me. One came after his leaving this planet, and one I received when he was in Bhuvaneswar. I think he was not as all ESKCON leaders are. He wanted to take and wanted to realize this truth. I know that he was not in the same opinion as his own leaders are. In so many siddhants, he wrote a book taking all the example from Swamiji books that you never can fall from Golok Vrindavan. He made a book and he gave so many examples of Swamiji, what he has written, and he discovered so many things from Jiva Goswami's Sandarbha, also from Chaitanya Charitamrita, and from so many books. I did not know that he has done, but after his departure, anyone did read that book, I saw that this book is so good. He did not want to compromise anyone who is against Bhakti Siddhanta, and that is why all his own leaders wanted to suppress him. That he has to give up all that ideas and what he are telling he should adopt. But he never, never, he could never compromise it. Like Siddha Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, like our Guruji, like Swamiji, Siddha Bhaktivedanta Swami Maharaj, they never compromised with any against Bhakti, against Siddhanta. That is also my feeling. If the whole world is one party, and alone, even I cannot compromise with them. He was also in that state. So I think that he was a proper disciple of Swami. In our disciplic line, I think that now these leaders are not in disciplic line. They are not thinking to adopt all the principles of our disciplic line. রিকগনাইজেড ওর রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, সেটা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, দে আর অল্প দুই আগের সিদ্ধান্ত মহারাজ অল্প so he never compromised with them, and that is why they began against of Srila Gaura Goswami Maharaj. They also they made so many things that you cannot go to Poland, you cannot go to Eastern countries, you cannot preach here and there. They wanted to imprison him in a room in Kualeshwar. But he was a lion, so he jumped up out of his cave and he went here and there and preached all this boldly. I must say, once he went, 2 or 3 years, I don't remember, he went when I was in Puri, he went to 92. In 92 he went to Puri to see me, to meet him. And then we discussed so many things, especially on the matter that there is so much difference between Vaidhyabhakti and Radha. Our disciplic line from Rupa Goswami to the Jiva Goswami, also before them, Sabdamodara Radhamananda, and after that, after Bhakti Vinod Thakur Srila Prabhupada, our Guru, they have not come to this world only to preach Vaidhi Bhakti. They have come to preach Sar and Saktam Tam, Srimad Bhagavatam, also Raganga Bhakti. Without Raganga Bhakti, we cannot understand Srimad Bhagavatam, Chaitanya Chaitanya. So he has written in his books any all these things. I know that anyone can be known and he can be realized by his books. That we know that from Srimad Bhagavatam, who was there. Though they have not written that how they are to his birth, where, what he knows. But yes, everything, who was he, we can know by Srimad Bhagavatam. Krishna Vyasa and can be known by his Chaitanya Chaitanya. How he was a Rashika and Bhauta and Satsakya and Siddhanta. We can also know Rupa Goswami by his books, so many books, especially by Bhakti Rasami Sindhu, Ujjwal Nirmani, and others. Then who was he? He was Yogi Manjari actually, and he has come with his behind Krishna Kapoor to preach all these things. Manu Pashuji Chaitanya Mano Vishnam Sadhita Vijayina Bhutale Swayam Rupa Sadamayam Nada. He has only come to this. Not only Vaidhi Bhakti. Bhakti has been preached. Vaidhi Bhakti has been preached by Ramanuja, Madhvacharya, Rimbakacharya, by all previous acharyas. They have not only come from Chaitanya Mahaprabhu, come from all these things. It can be preached by Sadashi, that is Madhvacharya. No use of coming up Chaitanya Mahaprabhu all these things. So, he only came for anarchita charin kirat karunaya vatirna karo and radhaya pranaya mahima kirti. He came to test the 3 inner desires, modes of Srimati Radhika. And to preach পৃথিবী উন্নত উজ্জ্বল রসায়ন স্বশক্তি গ্লোরি অফ দি বিউটি অফ উন্নত উজ্জ্বল রস হোয়াট ইজ দ্যাট বিউটি গৌতমী তোমার আছে সার্ভিসেস অফ মঞ্জারি তাই গুরু পুরস্কার সো এ পার্সন হ্যাভিং দি মুভ ইনার অ্যান্ড আউটার অফ রূপ গোস্বামী ইন রূপান্তর বাট দোজ হু আর নট পার্টিস অ্যাকচুয়ালি দে মুভ ইনার অ্যান্ড আউটার ফোর্স অফ রূপ গোস্বামী দে মে বি রাগা রুগা বাট নট রূপান্তর আই নো দ্যাট ইউ আর রাগা রূপান্তর ইনার মোট অফ সিলার গোস্বামী দে ক্যান নো অল দিস থিংস বাই হিজ রাইটিং অ্যান্ড অলসো বাই সো হি ওয়াজ ট্রুলি মাই ফ্রেন্ড হি হ্যাজ টু মাচ অনার ফর মি আই নো ফ্রম দিস ডিসাইপল ওয়ান্স হি মেট ইন বৃন্দাবন ফার্স্ট হি মেট ইন বৃন্দাবন When Swamiji Maharaj, Bhaktivedanta Swami was living this planet and he was going to serve this divine Kapoor Radha Kapoor in Golok Vrindavan. But all the senior sannyasi and jetisi were around me, so he could not talk more with me because it could not help me. But I know that he has told to me so many disciples that Sadhu Singh is prominent thing. Without Sadhu Singh, we cannot improve. But who is Sadhu? Who is actually following Rupa Goswami? Our disciples like Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Prabhupada, they are he has written in his testament and summary explanation in Srimad Bhagavatam so many things. But he covered all these things for the sake of not qualified, so much qualified devotee. But he has demanded that after some years there will be qualified and they will do also. And then they will be qualified for. So he covered all these things and he put that response group meditation clearly manifested. Anyhow, he was a very bona fide Vaishnava. He followed Raganuga Bhakti, Rupanuga Bhakti, Vaishnava. The disciples, pure disciples of Guru Govinda Maharaj, they are such a gift they were, after this divine, after went to Vrindavan, quite to go and spend themselves and have the same mood, same speaking, same thing as they were taking from, learning from. But they think that here and there is more arguing. It is very hard to have. So when Gokulinda Maharaj left this world after 2 or 3 days or 10 days, all the senior disciples of Gokulinda Maharaj went to see me, meet me at Navadvipa. And they meditating, their thirst is not quenching there, so they are coming here, there. I have told them that I will help you. I don't want to make any disciple, but yet I want to help, as I have helped forever. Today is now
साधारण भक्तों से वो श्रेष्ठ है। इस चीज को समझ करके उनको भी वैष्णव संत में रखो, इसे उनके प्रति भी किसी प्रकार की अवज्ञा, किसी प्रकार का तुच्छ ताच्छल्य बोध न हो। कोटि करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में ये स्थिति उनकी आई है और हम भी उसी स्थिति में आए हैं। इस चीज को समझो, जो इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो साधन भजन है, एक वैष्णव की निंदा से, अवज्ञा से वो सब समाप्त उखाड़ करके फेंक, इसलिए उसका भयंकर फल भी है। अब विशेष करके तीर्थों में भी ब्रज में वो वज्रलेप के समान वो हो जाता है। खूब सावधानी से विचार करके ये सब चलना चाहिए। तो हम बतला रहे थे प्रौढ़ मध्य मंद प्रेम गोपियों का, कहां वो प्रेम और कहां हम लोग, उसका सुनने का अधिकारी कौन है, यही समझो। तो इसलिए शांत चित्त होकर के हम लोग इन चीजों को श्रवण करेंगे, अनुधान करने की चेष्टा करेंगे, जहां की माया के प्रति कहीं भी लोभ नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, अर्थ स्त्री संग प्रतिष्ठा किसी प्रकार की भी कोई वासना हृदय में नहीं रहेगी। एकांतिक रूप में इन्हीं सब का चिंतन लीप और ये श्रवण कीर्तन होगा, तब तो ये चीजें आएंगी। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि तुम लाख चेष्टा करो, पढ़ करके नहीं होगा, साधन भजन करो, साथ साथ में साधु संग में हरि कथा सुनो और तुम्हारा चित्त जितना ही माया से ऊपर चलता जाएगा उतना ही चीजों को अनुभव कर सकोगे। केवल पढ़ने से लाख दिन रात पढ़ते रह जा रच पच जाओ तो नहीं होगा, यह होगा वैष्णव की कृपा से कुछ साधन सापेक्ष। जितना ही माया का मल दूर होता जाएगा, चित्त बल प्रकाशित होता जाएगा, हम उनको अनुधावन या अनुभूति कर सके, अन्यथा लाख चेष्टा करो नहीं होगा। माया कि साधारण एक चीज हम जानते हैं कि क्रोध या माया की आसक्ति यही नहीं जा रही है, और ये चीजें कहां से आएंगी। ये परम दुर्लभ हम लोगों का सांप्रदायिक संपत्ति है, चैतन्य महाप्रभु इन्हीं चीजों को ले आए, सनातन गोस्वामी उस चीज को वितरण कर रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे नहीं समझ सकते। जब तक ये वृत्तियां रहेंगी कैसे समझेंगे हम, दो वृत्तियां एक साथ, दो तलवार एक मैन में नहीं रहती है तो ये दो वृत्तियां कैसी रहेंगी। अभी तो हम लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं, क्रोध मन की वृत्ति है ये ठीक है ना, क्रोध किसकी वृत्ति है, मन की वृत्ति माने माई की वृत्ति है, माया की। अच्छा, एक आदमी अभी नाना प्रकार के अनर्थों से भरपूर है किंतु हरि नाम करता है, मैं हरि नाम करूंगा, अच्छा ये वृत्ति किसकी है, माया की है ना किसकी, किसकी है, ऐसा मत सोचिए। अभी मन से सोचा ये संसारिक वृत्तियों के प्रति जाइए, क्रोध आया हमको किसी स्त्री के प्रति, किसी के प्रति हमारा कुछ, हमारी कुछ आसक्ति हुई उनके प्रति, कुछ जैसा भी जड़ीय काम एक पैदा हुआ, ये मन की वृत्ति। और उसी वृत्ति से हम सोच रहे हैं कि हमने भी ये सोचा कि हमारा मंगल कैसा होगा, ये भगवान का नाम करने से होगा, तब हरि नाम करने लगे। ऐसे मालूम होता है कि एक ही चित्त की ये दो वृत्तियां, ये माइक प्रति आकर्षण और भगवान का जो नाम कर रहे हैं, किंतु मत समझो ऐसा गलत है, ये गलत है। माया की वृत्ति में भगवान को नाम लेने की वृत्ति कहां से आएगी? आएगी सब समय माया में ले जाएगी। और भगवान का नाम करूंगा इससे हमारा कल्याण होगा, ये शास्त्रों के विचारों सुन करके, गुरु जी के विचारों को सुन करके, वैष्णवों के विचारों को सुन करके, शास्त्रों में देख करके ये एक वृत्ति आई है, कृष्ण सेवा की वासना। ये वासना माइक नहीं है, किंतु मालूम पड़ता है कि एक ही मन से हम ऐसा सोचते हैं वैसा है, किंतु सर्वथा पृथक है। ये वृत्तियां ही दो हैं, एक स्वरूप शक्ति की वृत्ति और एक स्वरूप शक्ति की वृत्ति को जितना हम अनुसरण करेंगे उतना परमार्थ की तरफ में अग्रसर होंगे, और माइक वृत्ति का अवलंबन करेंगे तो काम क्रोध लोभ मद मोह माश्चर्य इत्यादि होकर के मरेंगे। इस तरह से दोनों का प्रभेद समझ करके भगवान की भक्ति में बढ़ने की चेष्टा हम लोगों को करनी चाहिए। उसमें आया है अन्नाभिलाष लसता शून्यम श्लोक में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में, तन मन वचन आदि की चेष्टाएं, ये क्या है? प्रवृत्ति परक और एक निवृत्ति परक है। निवृत्ति परक क्या? अपराध आदि से रहित होना, ये दोनों आवश्यक है, दोनों मिलकर के तब फिर भक्ति बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि एक वृत्ति को तो ये बढ़ रही है और दूसरी कुछ उसके लिए किया नहीं तो नहीं बढ़ेगी, इसलिए दोनों पर आवश्यक है, बल दिया गया है। तो यहां पर गोपियां किस भाव में हैं? ये तो प्रेम की अवस्था बतलाई, जिस प्रेम को कहते हैं प्रेम कौन, प्रेम के नष्ट हो जाने का कारण उपस्थित होने पर भी जहां पर प्रेम नष्ट नहीं होता वो अप्राकृत प्रेम है। अब यह प्रेम और परिपक्व होकर के जब उठता है और उसमें हृदय सरस होने के कारण द्रवित जब होने लगता है तो उस प्रेम को कहते हैं, परिपक्व प्रेम का नाम है स्नेह। वह स्नेह भी दो प्रकार का, घृत स्नेह मधु स्नेह। मधु स्नेह भी तीन प्रकार का, तब इसके बाद में तब फिर स्नेह मान, तब प्रणय, तब राग अनुराग, तब महाभाव। इस महाभाव में अवस्थित ये गोपियां हैं, उनके इस प्रेम को बतलाया जा रहा है। उस समय उसका लक्षण यह है, प्रौढ़ प्रेम का भी बतलाया ना, विच्छेद सहा नहीं जाएगा, धैर्य भी इससे वो च्युत हो जाएगा। इसके लिए वो दिखला रहे हैं, गोपियां भाव नेत्रों से देख रही हैं क्या, दिव्यो विमान गत स्मरण सारा भ्रषक पशून कबरा मुहूर् विनिप्य। पतियों के साथ में विमान पर चढ़ी हुई आकाश में विचरण करने वाली ये देवियां पतियों के साथ में हैं, और कृष्ण के मधुर बंसी मोहन बंसी नाद को श्रवण किया और कृष्ण के सुंदर रूप को निरीक्षण किया और देखते ही दिवस हो गई। उनके फूल जो केशों में लगे हुए थे वो चित होकर के एकदम धीरे धीरे गिरने लग गए, उनकी नीवी खुल गई, नीचे गिरने लग गए, उनको तन मन का सुध ही नहीं रहा और वो गिर गई अपने पतियों की गोद। ये कौन देख रहा है? गोपियां भाव नेत्र से देख रही, वहां इतना हुआ कि नहीं, ये तो घर में बैठी हुई है घर के अंदर, और जहां पर कृष्ण गोचारण कर रहे हैं वहां की ये बात हो रही है, या राष्ट्रस्थली की, या कृष्ण को देख करके वेणुवादन सुन करके देवियां आकाश से इनकी ये अवस्था हो रही, भाव नेत्र से देख रही। तात्पर्य क्या? अप्राणी में भी, प्राणी में भी, कीट पतंगों में और पशु पक्षियों और वृक्ष लताओं में भी अपने प्रेम को आरोप कर और ये भाव नेत्र से उनमें भी इस चीज को देखती हैं और अपने को अत्यंत तुच्छहीन दीनहीन मानती हैं और उस योनि में जन्म लेने की स्पृहा जागृत हो जाती है। किनको? इन गोपियों को। यदि देवियों से और गोपियों की तुलना की जाए, गोपियां कोटि जन्म में भी, कोटि करोड़ों जन्म में भी ऐसा साधन भजन करके इस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकती है। किंतु देख रहे आरोपित हो रहा है यहां, ये गोपियों की महिमा है जो ऐसा कर रही है। अरे उसको तो छोड़ दो, कृष्ण चले जा रहे हैं जिस पृथ्वी के जिस भाग पर, जिस बालू या रेतु या मिट्टी पर कृष्ण के चरण चिन्ह पड़े हुए हैं। कहते हैं आहो इन धूलियों का कितना सौभाग्य, कृष्ण पर चरण रख रहे हैं पृथ्वी के ऊपर में, आप पृथ्वी का कैसा सौभाग्य। यदि दुर्भागा यदि जगत में है तो हम मर करके वही पृथ्वी के अंदर में यही स्थान होती जिसके ऊपर में कृष्ण अपना चरण। ये पृथ्वी के उस धूली कणा का महात्म है ना गोपियों का, गोपियों के प्रेम का महात्म है, गोपियों के प्रेम की ये महिमा है। यहां पर गोपियां अपने घरों में बैठी हैं, भाव नेत्र से देख रहे, गोचारण करते हुए कृष्ण बाहर में गए, एक वन से दूसरे वन में अपने सखाओं के साथ में, बलदेव के साथ में, कोटि कोटि गायों के साथ में वो जा रहे हैं। पुष्प खिले हुए हैं, वन लता तरु इत्यादि विकसित हो रहे हैं, मानो कृष्ण को देखकर के आनंद से भर गए हैं, रोमांचित और होकर के हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, फलों से भरपूर हो गए हैं। और उसका ये वर्णन कर रही है इसमें जुगल गीत में, सरसि सारस हंस विहंगा चारुगृत हित चेतसि एत्य हरिमुपासत जे चतचित्ता हंत मृत दृशो धृत मौना सरसि सारस हंस विहंगा। गोपियां घर में बैठी हुई, ये गोपी गीत नहीं है, वेणु गीत नहीं है, ये जुगल गीत है। उससे वेणुगीत पूर्व राग का और यह है प्रौढ़ राग का। कृष्ण मिल चुके हैं, प्रेम और भी परिपक्व हो उठा है, उस समय में ये देख रही हैं। परीक्षित महाराज जी अपनी मैया से इसी का वर्णन कर रहे हैं। और इधर में सनातन गोस्वामी और उधर में सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित को। हम लोग थोड़ा अनुभव करते हैं जबकि बीमार पड़ जाते हैं, रात में नींद नहीं आती है और दर्द के मारे कराते हैं, प्राण गया, रात ही नहीं बीती, घंटी देखते हैं कि घड़ी वहीं पर ठीक है, चलती नहीं, सारी रात इतना बड़ा भारी, यदि दम्बे का रोगी हो तब देखो सांस नहीं आ जा रहा, मर रहा है, उस समय में खन कल्पत्व हो जाता है, गोपियां का उनसे कोटि गुण हो जाता है। गोपियां कह रहे हैं बड़े ही आश्चर्य की बात है, सरोवर के जितने भी सारस माने क्या है, सारस कौन सारस, ब्रजरस सहित ये सारस है, हंस नीर और क्षीर को अलग करने वाले, प्रेम और दूसरे चीजों को अलग करने वाले बड़े प्रेमी जो हंस हैं, और दूसरे जो विहंगम हैं पक्षी, कृष्ण के मनोहर मोहन वेणु गीत को सुनकर के हृत चित्त, उनका चित्त हरण किया जाता है, हो जाता है, अर्थात चित्त माने शुद्ध बुद्ध वो खो देते हैं, और निकट में आकर के कृष्ण के समीप आकर के संयत चित्त से, संयत माने चित्त को समाहित कर सब विषयों से आंखों को बंद कर चुपचाप हरि की उपासना करते हैं। जिन्होंने चित्त चुराया है जिस हरि ने, उस श्री हरि की उपासना करते हैं। उप आसन उपासना, नीचे निकट बैठ करके कैसी उपासना, ये तो शरीर से ऊपर आ गए नीचे, और मन से कैसे संजित हो, संयत होकर के सब प्रकार से उन्हीं की चिंता करनी। ऐसे यदि हम लोग भजन करें तब तो भजन है, और ऐसा नहीं कर सकते हैं संयत होकर के तब तो भजन नहीं, इसलिए हमारी ऐसी दुर्दशा है। यदि थोड़ा तबीयत खराब हो गई तो ये इन कथाओं को नहीं सुनकर घर में पड़े रहेंगे, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं, किंतु कथा में बैठ करके ये सुनने में रुचि नहीं आएगी, और इधर उधर जाकर के व्यक्ति की बकवास में सुनने में इधर में चित्त लग जाएगा। आज जिनको इधर में रुचि है, चाहे मर रहे हैं किंतु जैसे तैसे उसको सुनने की चेष्टा करें, ये तो रुचि का लक्षण। साधन अभी साधन के निम्न भूमि की, जिनकी ऐसी रुचि ही नहीं हुई तो वो क्या भजन साधन करेंगे, ऐसी रुचि होनी चाहिए। करें ये जरा हंस जैसे, सारस जैसे, दूसरे दूसरे जो पक्षी हैं वो वैसे भी तो बनो, गोपियां नहीं बन सकती, गोपियों का भाव होना बड़ा भारी कठिन है। अरे भौरों जैसा तो बनो, कोकिल नहीं बन सकते, नहीं कुहक सकते, किंतु तुम देखो तो ये सारस हैं बनके, बहुत दूर हैं, निकट नहीं है, चल रहे हैं और कृष्ण गोचारण करते हुए जा रहे हैं। अब टीका में देखो ये क्या कह रहे हैं, कीट पतंगों की से अतः तो भौरों से, और दूसरे दूसरे जो छोटे छोटे कीड़े हैं, ये पक्षी श्रेष्ठ है। पक्षी लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, थोड़ा मन देखकर के इधर सुनो, उधर घर में मत खींच लगाओ, ये पक्षी श्रेष्ठ है। ये कीड़े मकोड़े आकाश में नहीं उड़ सकते, इनकी चेतना जरा कम होती है, और ये पक्षी जो हैं कौन से, सारस, जो रस ग्रहण करने में प्रवीण हैं। सारस क्या करते हैं, सारस बड़े बड़े पक्षी होते हैं, उनकी लंबी लंबी गर्दन होती है, वो सारस जल के पक्षी हैं, किंतु जल में नहीं रहते, जल में तैरते हैं, और कमल की जो पराग है, क्या कहते हैं उसे, परागी तो कहते हैं, मृणाल, छोटे छोटे बड़े कोमल सुगंधित और बहुत सार वस्तु को वो ग्रहण करते हैं, कमल के भी सार को ग्रहण करते हैं। कमल तो अपने आप स्निग्ध सुंदर कोमल सुशीतल सब उसमें गुण है, निदा रही है, नींद की दवा दें दें है? जिसको नींद की नींद आ रही है उसकी अभी दवा हम दे देते हैं, स्टैंड अप ऑन द बेंच कर देंगे तब सब जाएंगे। अभी नाम नहीं बतला रहा हूं जो कौन सो रहा है कि कौन सो रही है, नाम लेकर के खड़ा कर देंगे तब समझ जाएंगे, इसलिए सावधानी रहिए, खूब ठाट से बैठिए। तो ये पक्षी श्रेष्ठ हैं, विशेषतः ये कृष्ण के समय नहीं आते, जैसे सुख सारी हैं ये कृष्ण के सब समीप आ सकते, किंतु जल में विचरण करने वाले जो पक्षी हैं वे उड़ भी सकते हैं जैसे सारस हंस, और कुछ जो हैं वो जल ही नहीं केवल रहते हैं, पंडुबी है ना, वो उसमें भी पंख होते हैं, थोड़ी सी उड़ सकती है, आकर के काली सी जब झुक घुस जाए और सरोवर के दूसरे छोर पर वो निकल जाएगी। रात में उसी को पुररी कहते हैं ना क्या, पुररी दूसरे। तो ये इन पक्षियों के डैने भी होते हैं, पक्षी जल में नहीं रहते किंतु जल में उतरते हैं दूर से आकर के, हंस भी सारस भी। तो ये यहां ये जलचर प्राणी हैं, इनका भाव देख करके गोपियां वर्णन कर रही हैं। देखो तो ये पक्षी भी कितने सौभाग्यवान हैं, इनको कोई मना करने वाला नहीं है। सारस होगा तो सारसी भी होगी, हंस हो गए तो हंसनी भी होगी, बत्तख होंगे तो बत्तखी भी होंगी, पंडुक तो वो पंडुकी भी होगी। स्त्री पुरुष दोनों कृष्ण की बंसी की तान सुनकर मोहिनी और जहां से वहीं से कृष्ण के समीप में आ जाए। यहां पर गोपियां पूर्ववत पूर्व की भाग दिवा दिरह दुख की शांति के लिए, उनको दूर करने के लिए परस्पर भगवत लीला का गान कर रही है। परस्पर दिवा विरह दुख क्यों, दिन सबके लिए सुखकर है किंतु गोपियों के लिए दुखकर है, क्योंकि मिलन नहीं इसमें होता है। सवेरे उस कृष्ण उठते ही गायों को बछड़ों को संभालने के लिए गोष्ठ में चले जाते, इसके बाद में सखाओं के साथ में मल्ल क्रीड़ा में लग जाते हैं, उसके बाद में जसोदा जी कृष्ण बलदेव को बुला करके घर में स्नान करा करके भोजन के लिए बैठाती है, उसमें हजारों सब सखा लोग। इसके बाद में वन प्रदेश में कृष्ण जाते हैं, उस समय जितने ब्रज के लोग हैं वो सब लोग कृष्ण के साथ में जाने लगते। यदि नंद जशोदा और मातृ और पितृ स्थानीय लोग यदि लौट भी आए कुछ दूर पहुंचा करके, तो ये गोपियां बाकी रह जाती हैं, वो जल्दी नहीं छोड़ना चाहती। किंतु उस समय भी कृष्ण के लाखों लाखों सखा बलदेव प्रभु जी साथ में रहते, इसके बाद में वन में प्रवेश कर जाते। गोपियां लौट आती हैं और विरह में वियोग में दुख अनुभव करती हूं और एक दूसरों से यह वार्तालाप कर। शाम को यदि लौटे भी कृष्ण तो लाखों सखा ग्राम वाले आ गए और उस समय में गोपियां उनको अपने गोपियां माने मातृ स्थानीय गोपियां अपनी गोदी में लेकर के कृष्ण को दुलार लाड़ प्यार करने लग जाती है। उस समय गोपियां यदि देख भी चले तो बहुत दूर से। इसके बाद में कृष्ण ने स्नान इत्यादि किया, फिर गऊओं को संभालने के लिए चले गए और फिर वहां से आकर के प्रसाद पाया, नंद बाबा और सब उपानंद सबके साथ में सखाओं के साथ में विश्राम करने चले। अब तक उनको करीब करीब 16-17 घंटे गोपियों से उनका कोई भी मिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए दिवा दुख। यदि दिवा दुख है तो तब कुछ बाकी रह गया ना, क्या बाकी रह गया, तो उसका यहां पर उल्लेख नहीं किया, उसको अवहित्था पूर्वक उसे छिपा दिया। दिवा दिरा दुख शांति के लिए भगवत लीला का गान करने लगी, आविष्ट होकर के, ऐसे आविष्ट हो गई कि भाव नेत्रों से सब कुछ देख रही हैं, ये क्या क्या कृष्ण वन में किस वन में कैसे जा रहे हैं, कैसे पशु पक्षी इत्यादि का सम्मान ग्रहण कर रहे हैं, ये सारी चीजों को यथावत वो ऐने में अपने रूप के समान में सबको देख रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को साधारण भी कृष्ण के प्रति हरि कथा में रुचि हो तो जो सुने हुए विषय को वो अपने आप चिंतन आएगा, चाहे वो सुने जा रहा हो या बैठा हो या ये आएगा, और यदि नहीं हुआ तो ये सुनना बेकार है, उन लोगों का सुनना बेकार है जो माया से भरे हुए काम क्रोध लोभ मह और संसारिक माया ममती अपने हृदय में भर रखा है, और सुना और यहां से उठते ही जो सुना था वो भी भूल करके बस देह में आसक्त होकर के सारी कुछ को भूल गए। आराम से स्वप्न देखा, देखा जी मेरी बूढ़ी मैया आ रही है, मेरी बहन आ रही है और मेरा भैया कह रहा है भैया तुम हमको छोड़कर के गए, हम बड़े दुख से हैं। वही संसार की सारी जितनी भी बातें हैं वो सब बूढ़े होने तक 90 बरस की उम्र 100 बरस की उम्र में मरने जा रहे हैं, 100 बरस हो गया दीक्षा लिए हुए और वही चीजें आएंगी क्योंकि इसके लिए शुभ रूप में जत्न नहीं किया, इसलिए सपने में वही चीज आएंगी। गुरु जी से भेंट हुई, कुछ परमार्थिक शिक्षा युक्त बातें या राधा कृष्ण की जो लीलाएं सुनते हैं उनके लिए कभी भी आती नहीं, उनका जीवन बेकार का, हरि कथाओं का कोई भी असर नहीं। आज जिन लोगों को ऐसा होता है जिसको श्रवण किया उसका मनन किया और दिन रात उसी की चिंता कर, वो जरूर आएगा, अंततः मृत्यु के समय में जरूर आएगा अनायास रूप में, ये हरि कथा का फल। उसको दुख भी स्पर्श नहीं कर सकेंगे, चिंता कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज जिन लोगों ने ऐसा नहीं सुना वो प्रॉब्लम से भरे हुए हैं, कहें पहले प्रॉब्लम को ठीक कर लें तब हरि कथा को मन से सुनेंगे, एकांत में जाएंगे और वहां पर एकांत में कोठरी बनाएंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, दिन रात हरे कृष्ण करें बस, ये बस चंडू खाना का ये गप हो जाएगा। चंडू खाना जानते हैं, शराबी होते हैं ना, शराबी मटके में शराब भर करके ताड़ी जानते हैं ना, शराब नहीं ताड़ी ढाल रहे हैं और गप करे, मैं बादशाह इंद्र वहां दिल्ली का बादशाह मैं हूं और वैसा ही गप करते, ऐसे ही स्थिति हो। इसलिए इन सब चीजों को सावधानी से समझ बुझ करके भजन करो। अब गोपियां उस भाव में कौन प्रौढ़ अवस्था में प्रौढ़ प्रेम में ने? उस पूर्वराग से भी अधिक प्रौढ़ प्रेम में ये गोपियां कह रही हैं, सारस हंस सरसी सारस हंस विहंगा चारुगृत हित चेतस करेंगे। सखियों आ देखो तो इन पक्षियों का कितना सौभाग्य है, इनको कोई मना करने वाला है, कोई बिकने नहीं है। कृष्ण ने स्वच्छंद रूप से बंसी बजाई और उसके शब्दों को सुन करके वेणुनाद को श्रवण करके ये वहां से झट जहां कृष्ण वेणु बजा रहे हैं वहां पर उड़ करके चले आए, अथवा ये समझो कि जहां पर वो सरोवर है उसी के निकट में ही कृष्ण वेणु बजा रहे हैं और वहीं पर सारे जो इधर उधर तैर रहे थे पानी में और कमल के पराग इत्यादि को मकरंद को ग्रहण कर रहे थे सब कुछ भूल गए, भूल करके भोग सामग्रियों को भूल करके सरोवर से दूर अवस्थित रहते हैं वो कृष्ण के लिए। पानी में बहुत ही सुंदर मधुर और सुस्वादु कमल की नाभि में वो रहता है पराग, उसको ग्रहण करते हैं। संसार का सुख के साथ में उसकी तुलना लगाओ, बहुत ही मनोरंजक बहुत ही मनोहारी वो चीजें हैं क्या ये संसार के भोग। जहां कृष्ण के भजन की कोई बात सुनकर के गुरु वैष्णव से और उन सबको त्याग करके उनके समीप आकर के जो भजन करते हैं वो सारस है, वो हंस हैं, नहीं तो कौवे हैं, यदि ऐसा नहीं तो कौओं की गिनती। यहां पर कौओं की कहीं भी नहीं आए, ये कृष्ण की बंसी सुन करके आए, वो तो डर करके उचक करके देख करके उड़ करके भागेंगे। ओ संख्या में अतीत हैं, संख्या भी सारस हंस और अन्य प्रकार के जितने भी जलचर हैं, विहंग हैं, कृष्ण के चारु वेणु गीत को, चारु माने मोहन, चारु माने अत्यंत मधुर विशेष करके अवरोह और आरोह स्वर से युक्त कृष्ण की मधुर बंसी को सुनकर शायद ये सुनते हैं कि हमें बुला रहे हैं और सभी सब कुछ छोड़कर कृत चित्त कृष्ण ने बंसी ध्वनि से उनका चित्त चुराया, लेकर के जब चलने लगी बंसी की ध्वनि उसके चित्त को निकाल लिया, उसके हृदय से चलने लगी, तो ये भी पीछे पीछे दौड़ गए। अपने चित्त को पाने के लिए, अपने हृदय को पाने के लिए वो दौड़ उठे, व्याकुल हो गए। प्रथमतः मोह प्रयुक्त इतस्तत भ्रमण करिया, इधर उधर घूमते हैं, और इसके बाद में जिधर में बंसी की